नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध 2 महीने से भी ज्यादा लंबा खिंच चुका है। जो युद्ध पहले सिर्फ सीमाओं के पास लड़ा जा रहा था, अब गाजा के अंदर उसकी पूरी तरह सेंधमारी हो चुकी है। इजराइल के बम धमाकों ने गाजा की तस्वीर बदल कर रख दी है। अब उसी गाजा को बचाने के लिए हमास का चीफ इस्माइल हानिया पाकिस्तान के पास पहुंच गया है। मदद की गुहार लगाते हुए कहा गया है कि इस युद्ध को रुकवा दिया जाए। असल में पाकिस्तान में इस्लामिक स्कॉलर्स की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। उसी कॉन्फ्रेंस में हमास चीफ इस्माइल हानिया ने भी हिस्सा लिया। वहां पर अपने संबोधन में उसने सीधे सीधे पाकिस्तान से मदद मांगी। मदद भी कोई आर्थिक या ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि इसराइल को धमकी देने के लिए। हमास चीफ ने कहा कि पाकिस्तान तो परमाणु संपन्न देश है, वो अगर इसराइल को परमाणु युद्ध की धमकी देगा तो ये युद्ध रुक सकता है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान को हर कीमत पर मुस्लिम देश की मदद करने आगे आना चाहिए। वो इस समय इसराइल को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लगातार अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उनकी तरफ से अमेरिका का सहारा लेकर फिर भारत पर ही निशाना साधा गया है। उन्होंने जोर देकर कह दिया है कि अमेरिका की चेतावनी की वजह से भारत नरम पड़ा है, उसके रुख में कुछ बदलाव दिखा है। एक मीडिया पोर्टल को दिए इंटरव्यू में ट्रूडो ने ये सारे बयान दिए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि मुझे लगता है अमेरिका ने पन्नू की कथित हत्या के लिए भारतीय नागरिक का हाथ बताया है, उस वजह से अमेरिका ने भारत को चेतावनी भी दी है। उस चेतावनी के बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में कुछ सुधार दिख रहा है। भारत के सुर भी पहले की तुलना में कुछ बदल गए हैं। मैं मानता हूं कि अब भारत को ये बात समझ आ गई है कि सिर्फ आक्रामक होने से कुछ नहीं होने वाला है। इसी वजह से अब सहयोग को लेकर उनकी भावना खुलेपन वाली दिख रही है। भारत अब समझ चुका है कि कनाडा के खिलाफ इस तरह से मोर्चा खोलने से कोई भी समस्या हल नहीं होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी हार के बाद नतीजों को पलटने की कोशिश में विद्रोह किया था और अब ये स्पष्ट है। बाइडेन ने हालांकि कोलोराडो के उच्चतम न्यायालय के उस फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की जिसमें कहा गया है कि 2021 में अमेरिकी कैपिटल पर हुए हमले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका थी और इस कारण वो अगला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते। बाइडेन ने विस्कोसिन में संवाददाताओं से कहा, 14वां संशोधन लागू होता है या नहीं अदालत इस पर निर्णय लेगी, लेकिन उन्होंने यकीनन विद्रोह को हवा दी, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बाइडेन ने ट्रंप की ओर से हाल ही में की गई उन टिप्पणियों के लिए भी उनकी आलोचना की कि प्रवासी देश के रक्त में जहर घोल रहे हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण में शामिल सैनिकों की प्रशंसा की और कहा कि देश की ये नीति है कि दुश्मन देशों द्वारा उकसाए जाने पर परमाणु हमला करने में हिचकिचाया नहीं जाएगा। उत्तर कोरिया में पिछले वर्ष से परमाणु हथियारों के परीक्षण में तेजी आई है और देश के नेता किम जोंग उन कई बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दे चुके हैं। हालांकि कई विदेशी विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया को अभी तक सक्षम परमाणु मिसाइलें हासिल नहीं हुई हैं। उत्तर कोरिया ने सोमवार को 5 महीनों में अपना पहला अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में अमेरिका दक्षिण कोरियाई बैठक का हवाला दिया। बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बुधवार को आवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का आह्वान किया और लोगों से अपील की कि वो करों एवं बिलों का भुगतान ना करें। इससे पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 7 जनवरी को होने वाले चुनावों से फैली राजनीतिक अशांति के बीच अपना चुनाव अभियान शुरू किया। बीएनपी और उनके अधिकतर धुर दक्षिणपंथी सहयोगियों ने आरोप लगाया कि मौजूदा शासन व्यवस्था में चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। उन्होंने चुनाव की निगरानी के लिए देश के संविधान में संशोधन करके एक अंतरिम सरकार गठित करने की मांग की। बीएनपी के प्रवक्ता राहुल कबीर रिजवी ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, हर नागरिक के अधिकारों को स्थापित करने के लिए हर प्रकार का सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चीन के उत्तर पश्चिम में गांसू और किंघई प्रांतों के भूकंप प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं, जहां बुधवार को मरने वालों की संख्या 134 तक पहुंच गई है और 980 लोग घायल हैं। कड़ाके की ठंड के बीच बचावकर्मी उन लोगों को निकालने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं जो अब भी इमारतों के मलबों के नीचे फंसे हुए हैं। अधिकारियों ने जीशीशान काउंटी में मीडिया को बताया कि सोमवार को आए 6.2 तीव्रता के भूकंप में गांसू प्रांत में 113 लोगों की मौत हो गई और 782 अन्य घायल हो गए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।